लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, मानव जीवन की चाहतों में खुशी एक वह चाह है जिसकी कामना हर मानव अपने जीवन में करता है। हमारे जीवन में जिन चीजों को करते उसका संबंध खुशी से है, जो मानवीय जीवन की इस हकीकत को बयां करती है कि हम सभी सदैव खुश रहने के लिए बनाए गए हैं। ईश्वर ने खुशी को, आनंद की अनुभूति को हमारे हृदय की गहराई में अंकित किया है। अतः जीवन की सच्ची खुशी को हम स्वयं अपने हृदय की गहराई में उतरते हुए अनुभव करते हैं। वहीं दुनिया के किसी भी मानव को कोई भी सच्चे अर्थ में खुश नहीं कर सकता यदि वह स्वयं खुश रहने का विचार और चुनाव ना करता हो, क्योंकि खुशी हमारी व्यक्तिगत चाह से जुड़ी हुई है। श्रोताओं, 40 के चौथे रविवार आराधना विधि चिंतन पाठों की विषय वस्तु हमारे लिए आनंद खुशी के भाव को व्यक्त करती है। वास्तव में माता कलीसिया 40 के चौथे रविवार को आनंद के रविवार स्वरूप घोषित करती है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए स्वयं में यह जानने की कोशिश करें कि हमें किन बातों और चीजों में आत्मिक और सच्ची खुशी की अनुभूति होती है। खुशी की खोज हेतु हम अपने में क्या क्या करते हैं? क्या हमारे द्वारा खोजी और पाई जाने वाली खुशी लंबे समय तक हमारे मन, दिल और हृदय में कायम रहती है?
ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूर में से एक जैसा रख लीजिए।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में उन बातों की परख करने में मदद करे जिसके द्वारा हमें सच्ची खुशी मिलती है, जिससे हम उन बातों के लिए सदैव अपने में लालायित रहें और उन्हें दूसरों के संग बांट सकें। नबी योशुआ के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ इसराइलियों का प्रतिज्ञात देश में पास्का पर्व मनाने और प्रतिज्ञात देश की पहली उपज का पहला अन्न खाने का जिक्र करता है। कनान में इसराइलियों की यह घटना किसी भोज में या खाने की मेज में हमें मिलने वाले आनंद को व्यक्त करती है। भोज किसी भी संस्कृति में खुशी को व्यक्त करने का एक विशेष पल होता है, जिसे हम धर्म ग्रंथ बाइबल में भी पाते हैं, जहां यीशु अपनी माता और शिष्यों के संग काना के विवाह भोज में शामिल होते और अपना पहला चमत्कार करते हैं। श्रोताओ, भोजन के संबंध में इस भांति दूसरों के यहाँ अपने को बुलाए जाना और अपने यहाँ दूसरों को निमंत्रण दिए जाने में दोनों पक्षों में हम खुशी के संदेश को पाते हैं। दूसरों के यहाँ जाना या दूसरों का हमारे यहाँ आना एक तरह से हमारे हृदय में व्याप्त आनंद और खुशी को व्यक्त करता है। यहाँ हम इस बात को भी गौर कर सकते हैं कि हम उन घरों के समारोह में और भी अधिक खुशी और उत्साह से शामिल होते हैं जिनके प्रति हमारे मन और दिल में कोई भी ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, अर्थात जिनके संग हमारा बनता है। वहाँ हम खुले विचारों से आते जाते और उठते बैठते हैं। वहीं जिनके संग हमारा नहीं बनता, वहाँ जाने में हमें थोड़ी आनाकानी होती है। हम अपने में एक तरह से असहज महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार हम बहाना बनाकर मिले निमंत्रण को भी अस्वीकार कर देते हैं। अतः भोज हमारे लिए खुशी के क्षण में शामिल होते हुए दूसरों के संग एक गहरे संबंध में प्रवेश करने का साधन बनता है, जहां हम अपनी खुशी को दूसरों के संग बांटते हैं। श्रोताओ, कुरुंथियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिए गए आज का दूसरा पाठ हमें मिलने वाली आध्यात्मिक खुशी के रहस्य को व्यक्त करता है। आज का दूसरा पाठ मसीह के संग हमारे एक होने की बात कहता है। वह जो मसीह के संग एक हो गया है, वह अपने में एक नया मनुष्य बन गया है। उसके लिए पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यहाँ हम यीशु ख्रिस्त के संग हमारे मेल मिलाप की बात को व्यक्त होता पाते हैं। पिता ईश्वर ने यीशु ख्रिस्त में हमारे सभी पापों को क्षमा कर दिया है और हमें नए जीवन का एक उपहार प्रदान किया है। इस भांति हम सभी पुत्र में एक नई सृष्टि, एक नए प्राणी बन गए हैं। श्रोताओ, यहाँ हम पुनः अपने मानवीय स्वभाव पर विचार कर सकते हैं। अपने मानवीय स्वभाव के अनुसार हम अपने को नई चीजों के प्रति आकर्षित होता पाते हैं जो साफ सुथरी सुंदर और मनमोहक हैं। नई चीजें जो हमारे जीवन में आती हैं, वे हमें आनंद और खुशी से भर देती हैं। पिता ईश्वर ने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त में हमें पापों से मुक्त कर अपने संग हमारा मेल कराते हुए हमारे जीवन को नया बना दिया है। इस क्षमादान के कारण हम अपने में आंतरिक रूप से एक आध्यात्मिक खुशी का अनुभव करते हैं, जिसकी चाह हर मानव करता है। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने उड़ाव पुत्र के दृष्टांत को सुना, जिससे हम भली भांति परिचित हैं। यहाँ हम छोटे बेटे को खुशी की चाह में पिता के घर से बाहर जाता हुआ पाते हैं। वह अपनी स्वतंत्रता में जीवन जीने की चाह रखता है। वह खुशी की चाह रखता और उसकी खोज में अपनी सारी धन संपत्ति को उड़ा देता है। वो खुशी प्रदान करने वाली चीजों में ही अपनी संपत्ति उड़ाता है, लेकिन उसे वह खुशी नहीं मिलती जिसकी वह खोज करता है। श्रोताओं, आज भी हमारे बीच कितने ही युवा हैं जो खुशी की खोज में अपने को माता पिता, परिवार और समाज से अलग कर लेते हैं। कितनी संतानें और माता पिता हैं जो क्षणिक खुशी की चाह में अपने को अपनों से दूर कर लेते हैं। कितने ही बच्चे हैं जो अपने में वापस लौटने की चाह रखते हैं, किंतु समाज की टीका टिप्पणी, भय और शर्म के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। आज के पाठों का संदेश हमें ईश्वर के राजदूत अर्थात समाज में मेल मिलाप का एक साधन बनने का निमंत्रण देता है। पिता ईश्वर ने यीशु ख्रिस्त में जिस तरह हमारे पापों को क्षमा किया है और हमारे संग मेल करा लिया है, उसी भांति हम दूसरों के संग, अपनों के संग मेल मिलाप करने हेतु बुलाए और भेजे जाते हैं। आइए हम शक्ति के स्रोत पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें विश्वास, भरोसा और साहस से भर दें, जिससे हम मेल मिलाप हेतु अपना छोटा कदम दूसरों की ओर बढ़ा सकें, अपने भाई बहनों के लिए आध्यात्मिक खुशी का कारण बन सकें, जिसकी खोज करने हेतु वे अपने जीवन से भटक गए हैं।
मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। तेरे दर पे न आया कभी, ना ये मस्तक झुकाया कभी, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जो इस समय वैटिकन के संत माता आवास में हैं। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने शुक्रवार को पत्रकारों के लिए एक ब्रीफिंग आयोजित की, जिसमें द्विपक्षीय निमोनिया से पोप फ्रांसिस के ठीक होने के बारे जानकारी दी गई। श्री ब्रूनी ने कहा कि पोप का स्वास्थ्य स्थिर है, उनके श्वसन और शारीरिक गतिशीलता के साथ साथ उनकी आवाज में भी थोड़ा सुधार हुआ है। संत पापा दिन में नाक की नलिकाओं के माध्यम से उच्च प्रवाह ऑक्सीजन की मात्रा को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। बुधवार को किए गए खून जांच के अनुसार पोप के रक्त संबंधी पैरामीटर सामान्य है। पोप फ्रांसिस इन दिनों थेरेपी, प्रार्थना, आराम और कुछ कार्य गतिविधियों के बीच अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं और रोमन कुरिया के सभी विभाग उन्हें अपनी गतिविधि के बारे में अपडेट करने के लिए दस्तावेज भेजते हैं। ब्रूनी ने कहा कि पोप फ्रांसिस को म्यांमार में भूकंप के बारे में सूचना दे दिया गया है और वे पीड़ितों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह उन्होंने फादर रोबर्टो पासोलिनी ओएफएम कैप द्वारा दिए गए 40 काल के धर्मोपदेश में भी भाग लिया। इस रविवार के देवदूत प्रार्थना के पूर्व उनके संदेश को वैटिकन प्रेस कार्यालय जारी करेगा, जैसा कि पिछले रविवारों में किया गया है। विनाशकारी भूकंप से प्रभावित म्यांमार एवं थाईलैंड के लोगों के प्रति संत पापा फ्रांसिस ने अपनी निकटता व्यक्त की है तथा उन्हें अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया है। उन्होंने शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित म्यांमार एवं थाईलैंड की जनता के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की। शुक्रवार को भेजे गए एक टेलीग्राम संदेश में संत पापा ने जान माल के नुकसान एवं व्यापक तबाही पर अपना दुख व्यक्त किया। पोप ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हार्दिक प्रार्थना की एवं इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक निकटता का आश्वासन दिया। साथ ही सभी राहत कर्मियों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया तथा प्रार्थना की कि उन्हें धैर्य एवं दृढ़ता की दिव्य कृपा से घायलों और विस्थापितों की देखभाल करने में मदद मिले। संत पापा फ्रांसिस ने जयंती तीर्थयात्रा में भाग लेने रोम आए चेक गणराज्य के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन के धर्मदक्षों को अपना संदेश दिया है, जो 28 से 30 मार्च तक रोम में हैं। संत पापा ने धर्मदक्षों से कहा, आपकी यात्रा आपके विश्वास को नवीनीकृत करने, संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ अपने संबंध को पुष्ट करने तथा प्रभु के प्रति आपके समर्पण को सहर्ष व्यक्त करने की इच्छा का ठोस चिन्ह है, जो सदैव हमारे साथ चलते हैं, कठिनाइयों में हमारा साथ देते तथा हमें अपनी शांति एवं प्रेम का साक्ष्य देने के लिए बुलाते हैं। संत पापा ने धर्मदर्शन से कहा, हमारा काम है निराश हुए बिना प्यार और दृढ़ता से बोना और सींचना। विश्व भर से करुणा के मिशनरियों की जयंती मनाने तीर्थयात्री बनकर वैटिकन आए पुरोहितों को संबोधित अपने संदेश में संत पापा ने उन्हें धन्यवाद एवं प्रोत्साहन दिया।
तिराना डुरेस और ऑल अल्बानिया के महाधर्माध्यक्ष जोवानी का प्रतिष्ठापन शनिवार को तिराना में किया गया। परम धर्म पीठ ने प्रतिष्ठापन समारोह में शरीक होने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा। ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने के लिए गठित विभाग के सचिव महाधर्माध्यक्ष फ्लावियो पेस ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। संत पापा फ्रांसिस ने महाधर्माध्यक्ष जोवानी को एक पत्र भेजकर मसीह के प्रेम में अपने भाईचारे के अभिवादन को प्रकट किया। संत पापा ने लिखा, अपनी आध्यात्मिक निकटता व्यक्त करते हुए मैं आपको अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूं कि पिता ईश्वर सभी अच्छाई के स्रोत आपको पवित्र आत्मा के प्रचुर उपहार प्रदान करें जब आप अपनी देखभाल में सौंपे गए झुंड का मार्गदर्शन करेंगे। संत पापा ने महाधर्माध्यक्ष जुवानी के पूर्ववर्ती महाधर्माध्यक्ष अतनास को भी याद किया, जिनके प्रेरितिक उत्साह ने अल्बानिया पर एक गहरी और स्थायी विरासत छोड़ी है। संत पापा फ्रांसिस ने महाधर्माध्यक्ष जोवानी को विभाजन को दूर करने और ख्रिस्तियों के बीच पूर्ण सामंजस्य की तलाश करने के तरीके के रूप में संवाद को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, युद्ध और हिंसा से चिन्हित इस कठिन समय में यह और भी जरूरी है कि ख्रिस्तीय एकता के लिए विश्वसनीय गवाही दें ताकि दुनिया भाईचारे की एकजुटता और शांति के लिए सुसमाचारीय संदेश को पूरी तरह से अपना सके। और संत पापा फ्रांसिस ने दक्षिण कोरिया में लगी अब तक की सबसे भीषण आग में घायल हुए लोगों और अग्निशमन कर्मियों तथा अन्य आपातकालीन कर्मियों के राहत प्रयासों के लिए प्रार्थना की। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित टेलीग्राम में संत पापा ने मृतकों की आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया के सुपुर्द किया और प्रियजनों के नुकसान पर शोक व्यक्त करने वालों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। संत पापा उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो घायल हुए हैं और अग्निशामकों और अन्य आपातकालीन कर्मियों के राहत प्रयासों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। स्थानीय नागरिक और कलीसिया के धर्माध्यक्षों को भेजे गए टेलीग्राम में संत पापा ने दक्षिण कोरिया के सभी लोगों पर सांत्वना, उपचार और शक्ति के दिव्य आशीर्वाद का आह्वान किया। 21 मार्च को आग लगने के बाद से कम 28 लोग मारे गए हैं और हजारों घर, कारखाने और अन्य संरचनाएं नष्ट हो गई हैं। लगभग 30,000 लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा है और अधिकारियों ने कहा है कि लगभग 8,000 निवासी अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं। उधर म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप ने पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और भी बदतर बना दिया है। शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से हुए विनाश का स्पष्ट अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि स्थिति भयावह है और मानवीय सहायता की बहुत जरूरत है। 7.7 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आए 4 झटकों ने म्यांमार को हिलाकर रख दिया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।